शक्तिमान।
हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने तारा जहां,
नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है कलाकारों के जीवन में अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। न केवल वो अपनी पर्सनल लाइफ को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ का स्ट्रक्चर भी वो बेटर बना सकते हैं। लेकिन कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं, क्योंकि यदि इंसान गलत रास्ते पर चला गया तो आगे की मंजिल में केवल अंधकार ही अंधकार होता है। क्यों हमें उन गलत रास्तों को नहीं अपनाना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज की आर्ट एंड कल्चर विंग की मुंबई एंड महाराष्ट्र जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय नेहा दीदी जी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कला भी है, प्रतिभा भी है, और एक जोश और जुनून उनके पास है, एक पैशन उनके पास है कि कुछ करके दिखाना है
जी।
समाज में मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कोई कला कम नहीं है, इसके लिए युवा वर्ग ऐसा है जो गलत तरीकों को यूज करता है
जी।
वो ये सोचते हैं कि हमें किस भी हद तक चले जाएं, लेकिन समाज में हमारा जो चेहरा है वो जाना जाना चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए, लड़कियां विशेषकर। कहीं ना कहीं वो ऐसे रास्तों पर अपने आप को धकेल देती हैं, ऐसे रास्तों पर वो चली जाती हैं, जो ये सोचती हैं कि यदि मैं इस गलत रास्ते पे चलेगी तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा
जी।
कैसे हम ये चीज, ये जो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको ठीक कर सकते हैं?
आपने सही बात बताई, और ये आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है
जी।
और उसमें स्पेशली ये जो कला का विंग है या तो कला का क्षेत्र है समाज के अंदर, यहाँ ये बातें बहुत बढ़ती जा रही हैं, और इसमें कलाकार ऐसा फंसा हुआ है जिसको हम चक्रव्यूह कह सकते हैं
जी।
कि एक बार फंसने के बाद उनको और ही ज्यादा फंसना ही है, उसमें निकलने का कोई रास्ता उसको नजर आता ही नहीं है, और आखिरी में उसकी लाइफ का अंजाम बहुत ही खतरनाक हो जाता है, जो कई किस्से हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें से ही कलाकार को निकालना ये एक बहुत बड़ा कार्य है, और इसके लिए हम इस विंग के साथ जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनका माध्यम और उनका साथ लेकर के हम कलाकारों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जब हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं, वो गलत कार्य करने के पीछे हमें हो सकता है कि टेम्पररी तो सफलता मिल गई या मेरे लिए कोई एक रास्ता खुल गया, लेकिन जो गलत कार्य हम करते हैं, बेस जिस कार्य को बनाया, उनका रिजल्ट आखिर गलत ही मिलना है।
बिल्कुल।
कभी कभी हम देखते हैं कि कलाकार एक दूसरे के ऊपर भी कोई गलत रास्ते अपना लेते हैं उसको पीछे करने के लिए या खुद को आगे करने के लिए, लेकिन यहाँ एक सनातन सिद्धांत, इस रूल को हर कलाकार को जानना बहुत जरूरी है कि जैसा कर्म रूपी बीज मैं बोऊंगी या बोऊंगा, मुझे फल वैसा ही मिलेगा। आज मैं आम का बीज बोऊंगी तो मुझे आम का पेड़ ही मिलना है,
मैं कांटा बोऊंगी तो मुझे कांटा मिलेगा, मेरे को फूल नहीं मिल सकता,
उसमें कोई अंतर आ ही नहीं सकता है। तो जब कोई गलत मार्ग को जरिया बना के मैं अपना रास्ता निकाल रही हूँ, रास्ते पे चल के मैं आगे तो जाऊंगी, लेकिन आगे जो मिलना है वो गलत ही मिलना है
जी।
क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, और कर्म एक ऐसा सीड है, बीज है, जो कभी भी नाश नहीं हो सकता है। कहीं कहीं ये अज्ञानता है कि भी मैंने गलत किया किसने देखा, सिर्फ मैं ही तो जानती हूँ या कोई एक व्यक्ति जानता है, भल मैंने अकेले में वो कर्म किया
जी।
लेकिन हम परमात्मा के दरबार में हैं, हमने भक्ति में कहते भगवान को हजार आंखें हैं,
वो देख रहा है आपको हर वक्त।
हाँ जी, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है कि मैंने जो गलत काम किया वो मेरी आत्मा के रजिस्टर में उसी समय नोट हो ही जाता है। और ये कर्म का सिद्धांत ऐसा सत्य और इतना पक्का है कि मेरी लाइफ में मैं जो करूंगी अभी नहीं तो कुछ एक साल के बाद, क्योंकि कर्म के भी प्रकार होते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं कि आपने किए तुरंत फल मिला, कई कर्म ऐसे हैं कि आपने अभी किए आपको दो तीन साल बाद फल मिलेंगे, कई ऐसे भी कर्म है आपने अभी किए और आपको 15 साल के बाद मिलेंगे। लेकिन कर्म करते करते अगर वो व्यक्ति ने इस शरीर को छोड़ दिया तो उसके अगले जन्म में भी उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो ये कर्म का सिद्धांत अगर कलाकार को बहुत अच्छी रीति से समझाया जाए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए
जी,
आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए ना, आपको नाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये पॉजिटिव बात है ना,
राइट।
तो उनके लिए आप जो मार्ग अपनाते हो वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। भले हो सकता है वो रास्ता थोड़ा कठिन हो और थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ते, वैसे भी कहते शॉर्टकट हमेशा डेंजर होता है, आप पहुंचो भी न भी पहुंचो या पहुंचने के समय भी आपको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़े। तो जहां ये अवेयरनेस आती है ना कि भाई आप गलत करेंगे आपको गलत बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको सही मिला भी लेकिन वो सही के साथ गलत इतना ज्यादा मिलेगा कि सही का आनंद आप ले नहीं सकेंगे। तो ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, उनको हम बता सकते हैं कि भाई इसने ये रास्ता अपनाया अंजाम क्या आया। तो ये गलत अंजाम को उसको दिखाकर हम उनको रियलाइज करके ये अवेयरनेस ला सकते हैं।
हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कलाकारों की, तो कई बार हम देखते हैं उन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। इस वजह से यदि मेरी एटीट्यूड में ही, मेरी पर्सनल लाइफ में भी यदि मैं इस तरीके का कर्म करता हूँ तो वो कर्म भी क्या है हाईलाइट होगा और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता लगेगा। तो ये चीज जो एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं,
उसके लिए भी ये अवेयरनेस, जो ये क्रांति हम लेने जा रहे हैं कि मूल्यों की जागृति
जी,
क्योंकि हमारे भारत की एक संस्कृति रही है जिसमें हम कहते हैं कि गृहस्थ एक आश्रम है। हमारे 4 आश्रम दिखाते, उसमें महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ को आश्रम क्यों कहा, क्योंकि वो अग्नि की साक्षी रख करके जब पति और पत्नी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं तो संबंधों की प्योरिटी है,
राइट।
तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में से ये जो प्योरिटी की भावना है वो विचारों के लेवल से पहले कम होना शुरू हुई। इसमें और भी संस्कृति का प्रभाव पड़ा कि भाई जो अच्छा लगता है वो करो। जब कलाकार ने अपने विचारों में ये दूषितता लाई, धीरे धीरे वो दूषितता उसकी पर्सनल लाइफ में आई। और पर्सनल लाइफ में दूषितता आने के पीछे का एक कारण ये है कि कलाकार अपने आप से दूर हो रहा है, उसको बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि जब आप बहुत एक्स्ट्रा कार्य में व्यस्त हो जाते हो ना, आपकी एनर्जी बहुत यूज होती है, तो आप खाली हो जाते हो
जी।
जब व्यक्ति अंदर से खाली है तो उनको क्या चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का मूलभूत स्वभाव है शांति, प्रेम, आनंद
जी।
और वही प्रेम को वो व्यक्ति आत्मा वो ढूंढती है, अपने आप से तो जुड़ी नहीं है तो वो एक्सटर्नल बाह्य प्रेम को ही अपने जीवन का आधार मानती है।
बिल्कुल,
क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो योगदान है या तो उसके जीवन को सेटिस्फाइड करने वाला एक साधन है वो है सच्चा प्यार। और आज हम देखते हैं कलाकारों के जीवन में इसकी बहुत कमी है, इसलिए वो बाह्य और शारीरिक प्यार को ही अपने सुख शांति का जरिया मानता है।
हम भी देखते हैं डिवोर्स केसेस कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं,
बहुत बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़े, क्योंकि वो फैमिली लाइफ से दूर हो रहा है। और जब वो फैमिली लाइफ में आता है तो उनके अंदर वो पावर नहीं रहती है कि वो अपनी पत्नी को या बच्चों को कुछ दे पाए। जब वो कुछ नहीं दे पा रहा है तो परिवार से भी उसको नहीं मिल रहा है, तो अंदर उसका खालीपन बढ़ता है और वो खालीपन निकलता है दूसरी व्यक्ति के साथ। जो व्यक्ति उनसे ज्यादा कुछ जुड़ी नहीं है, थोड़े समय के लिए वो संपर्क में आती है, तो थोड़े समय के संपर्क में उसको ज्यादा इमोशनली सपोर्ट करती है या उसको अच्छी बातें सुना देती है, उसको प्यार देती है, तो तुरंत फैमिली से कट हो जाता है, क्योंकि अब मूल्य धीरे धीरे उनकी लाइफ में टूट रहे हैं। और ये सिद्धांत भूल जाता है कि हमारा पवित्र गृहस्थ आश्रम है।
बिल्कुल,
हमें अपने आप से और परिवार की व्यक्ति से भी मुझे ईमानदारी से चलना है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू टूटा है। इसलिए आउटर रिलेशनशिप बढ़ गए हैं, और जितने बड़े हैं उतने और ही स्ट्रेसफुल ज्यादा वो खुद बन रहे हैं।
जी जी।
तो यहाँ पर भी ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया ये स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन 100% सक्सेसफुल गया है। क्योंकि उनसे खुद ही वो अपने आप को प्यार करना पहला शुरू करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैं खुद से प्यार करूं।
जी,
मुझे अपने आप से बहुत अच्छा लगे, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, तब मैं दूसरों को प्यार करके उसको अप्रिसिएट कर पाऊंगा। पहले खुद को भीतर से भरो। जब हम भीतर से फुलफिल है तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप के आ रहे हैं वो बहुत दूर हो जाएंगे। और आज ऐसे कलाकार हैं हमारे सामने जिन्हों के लाइफ में और जो अपनी इंडस्ट्री में देख रहे क्या क्या हो रहा है। खुद तो बच गए, अब वो औरों को भी बचा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
और उनको ये एहसास होता है कि भी सच्चा सुख तो अपने फैमिली को सस्टेन करके उसको आगे बढ़ाने में, नहीं कि रिलेशन को ब्रेक करने में।
राइट। जो हमारे मूवी मेकर्स हैं, जो मूवीज बनाते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसी मूवीज क्यों बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि पब्लिक यही डिमांड करती है।
जी।
अगर पब्लिक से पूछे तो वो ये कहते हैं कि वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीजें दिखाते हैं। अभी यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब क्या चीज सच है।
जी।
ये जो चीज है, ये कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वही मूवी इसको करोड़ों लोग देखते हैं, तो करोड़ों लोगों की जो मानसिकता है वो प्रभावित हो जाती है।
जी।
तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं?
कला समाज का एक नींव है, क्योंकि कला से हमारी संस्कृति बनती है। कोई भी देश की महानता उसके कल्चर से जुड़ी हुई है। पर हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि भारत का कल्चर तो पहले से ही इतना श्रेष्ठ रूप में आया है, अभी वो दूषित हुआ है। तो फिर से हम इस विंग के द्वारा हर फील्ड के, हर क्षेत्र के छोटे से छोटे कलाकार को लेकर बड़े से बड़े कलाकार को हम अप्रोच करते हैं, वहां तक हमारी विंग जाती है। जैसे एक सिंपल डिजाइन बनाने वाला, रंगोली बनाने वाला, वो भी आर्टिस्ट है। मेकअप करने वाला, वो भी आर्टिस्ट है। बैक स्टेज करने वाला, वो भी आर्टिस्ट है। कैमरामैन, वो भी अपने में कलाकार है। इसी प्रकार बड़ा डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर, ये सारे उसमें एक्ट करने वाले कलाकार, इन सभी कलाकारों से हम जुड़ते हैं और उनके अंदर ये जागृति लाते हैं कि आप जो दे रहे हो उनका न सिर्फ दो चार लोगों पर लेकिन पूरे समाज पर असर जा रहा है। और यहाँ भी अगेन कर्म की फिलोसोफी आती है कि आज मेरे से कुछ गलत मैसेज गया और वो भी कलाकारों के द्वारा गया, माना वहाँ स्टैंप लग जाती है कि भाई ये मूवी में हमने देखा ना, फलाने हीरो ने ऐसा किया
था,
फलानी हीरोइन ने ऐसा ड्रेसअप किया, हम भी करें, वो फिर ट्रेंड बन जाती है। आजकल तो टीवी घर घर में है।
बिल्कुल।
तो वो लोग समाज को डायरेक्ट कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो कितना उनके ऊपर बड़ा एक जिम्मा है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी
वो उनको महसूस कराते हैं। तो इस विंग से काफी हमारे डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं, स्टोरी राइटर जुड़े हुए हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं और छोटे छोटे कलाकार भी आते हैं। सब मिलकर जब उनका संगठन होता है ना, तो उनके विचारों में एक अवेयरनेस आती है।
जी।
स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर सोचेगा, अब मैं ऐसी स्क्रिप्ट बनाऊं कि उस स्क्रिप्ट को जब स्टेज पे कलाकार परफॉर्म करेगा उनको राइट मैसेज जाएगा।
बिल्कुल। और पब्लिक को भी, लोग देख रहे हैं,
तो समाज के नव निर्माण में उसका बड़ा योगदान हो गया। तो एक सटल वे में सारा पुण्य उनको जाता है। डायरेक्टर ये सोचेगा कि मैं ऐसा डायरेक्ट करूं फिल्म को या तो किसी स्टोरी को, कि उससे भी समाज को प्रेरणा मिले, तो वो पुण्य उनके खाते में जाएगा। फिर आर्टिस्ट आएगा, वो ये सोचेगा अरे इतनी अच्छी थीम है, तो वो थीम पहले उसको दिल में उतारनी पड़ेगी। तो अच्छी थीम को जब वो अपने दिल में उतारता है तो पॉजिटिविटी उसके खुद के अंदर आती है, फिर वो एक्ट करता है, देखने वालों में अवेयरनेस आती है। तो धीरे धीरे एक दीपक को जगाने से हम अनेक दीपकों को जगा सकते हैं। तो यही कार्य इस विंग के द्वारा हो रहा है। अभी तो काफी दीपक जग गए हैं और वो दीपक इतने अपने आप में सक्षम है कि वो अनेकों को जगा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा हमारा नेटवर्क अभी तैयार हो रहा है जो पूरी इंडस्ट्री में एक अवेयरनेस लाएगा। और उनसे हमें ये पक्का विश्वास है कि संस्कृति के द्वारा, क्योंकि कला और संस्कृति के द्वारा एक स्वर्णिम संसार को हमें लाना है
जी।
क्योंकि एक बार हमारा भारत स्वर्णिम
सोने की चिड़िया था
जी, जिसमें बेस्ट कल्चर था, देवी कल्चर था
बिल्कुल।
तो ऐसा कल्चर फिर से लाना, यही लक्ष्य को लेकर के हम इस सारे कलाकार को एक साथ मिलाकर ये क्रांति लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
यानी कि अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस ले लें, यदि मैं एक ऐसी चीज समाज को दे रहा हूँ अपनी कला के माध्यम से या मूवीज के माध्यम से जहाँ लोग अशांत हो रहे हैं या हिंसक हो रहे हैं, तो इसका मतलब कर्म फिलॉसफी के हिसाब से मेरे जीवन में मुझे हिंसा ही दिखाई देगी, अशांति ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये सभी चीजें मेरे जीवन से किस तरह से जुड़ी हुई हैं
जी।
केवल पैसा ही नहीं है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन को, निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि वो जो कमाई मैं करता हूँ उसको मैं यदि अपनी लाइफ में खर्च भी करता हूँ, तो मुझे लगता है वो उससे खरीदी हुई चीज भी वो मेरी लाइफ को प्रभावित करेगी।
ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत जो आप पूछते हो, ये भी कर्म फिलोसोफी से जुड़ा हुआ है कि अगर मैंने कोई गलत कार्य करके पैसा कमाया, कोई साधन मैंने अपनाया, तो जिस रास्ते से मैंने जो चीज पाई है ना, वो चीज उसी रास्ते में जाएगी। एक सिद्धांत है, मैंने गलत मार्ग से पैसे कमाए, अब वो पैसे मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, अब उस पैसे को बाहर जाना है तो मेरे जीवन में गलत चीजें वो पहले क्रिएट करेगा,
आने लगेंगी,
फिर आएगी और उनके पीछे मेरा गलत पैसे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत रास्ते से कमाया हुआ धन मेरे जीवन को गलत राह पे ले जाने के निमित्त बनता है, अशांति क्रिएट करेगा, या नई नई बीमारियां आ जाएगी, या कोई ऐसे हादसे हो जाएंगे कि वो धन वही जाएगा,
फाइनेंशियल लॉसेस के माध्यम बनेंगे।
और सही मार्ग से कमाया हुआ धन ही मेरे जीवन में सुख शांति ला सकेगा। ये सिद्धांत भी समाज को या कलाकार को जब समझ में आ जाता है ना, तो कहेंगे बल कम पैसे है, लेकिन वो कम पैसे से जीवन में तो शांति रहेगी और वो कम पैसे भी उसके जीवन में संतोष लाएगा।
लोग हमसे ये कहते भी हैं कि वो लोग तो गलत मेथड्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है उनकी लाइफ में
जी।
हम लोग तो सब कुछ ठीक भी करते हैं, वैल्यू बेस्ड भी होकर चलते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में फिर भी दुख है
जी।
कंपैरिजन करने लग जाते हैं और फिर उनका इन बातों से विश्वास उठने लगता है। वो सोचते हैं कि मूल्यों का कोई महत्व नहीं है
जी।
जो एंटी वैल्यूज होके चल रहा है वही सुखी है आजकल के जमाने में।
ये भी बहुत राइट बात है आपकी, क्योंकि प्रायः समाज में यही सोच चलती है। और इसके लिए ये जो कर्म फिलोसोफी है उसको थोड़ा और गहराई से जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर हम उनको डेप्थ में ले जाते हैं। क्योंकि सैद्धांतिक रूप में हम देखें कि भाई मैंने सच्चा किया, सही किया, तो मुझे सही मिलना चाहिए, लेकिन उसका डेप्थ तो ये है कि अभी मैंने किया है ना, तो अब तक मैं जो हूँ वो किसकी बदौलत है? आज मेरा जीवन जो चल रहा है, मेरी जो पोजीशन है, मैं जिस स्थान पे हूँ, मुझे जो फैमिली मिला है, मुझे जो वर्क प्लेस मिला है, वो किस आधार पर मुझे मिला है? मेरे पास जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है जो मैं अभी भोग रही हूँ
जी।
और अभी जो मैं कर्म कर रही हूँ उनका मुझे आगे वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है
जी,
और फिर भी वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है, और कोई व्यक्ति जो गलत मार्ग पे चल रहा है वो सुखी है, उसको जीवन में कोई परेशानियां नहीं, स्मूथ लाइफ है। तो यहाँ कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है व्यक्ति, वो अभी तो सत्य काम कर रहा है, लेकिन उसके पास्ट जन्मों के कुछ ही गलत कर्मों का बैलेंस अभी तक उसकी बैंक में है, जो वो अभी के स्ट्रगल के द्वारा वो भोग रहा है। जब वो उसका बैलेंस समाप्त हो जाएगा, तब वो अभी के कर्मों का फल उनका स्टार्ट होगा। अब जो गलत मार्ग पे है, हो सकता है वो व्यक्ति अभी गलत कर रहा है, उनके पास्ट जन्मों के पुण्य कर्मों की पूंजी अभी तक बैलेंस में कंटिन्यू है, जो अभी वो भोग रहा है। लेकिन अभी जो गलत करता है, उनका फल तो उसको गलत मिलना ही है। इस सिद्धांत को सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे समाज में कई ऐसे व्यक्ति चलते हैं आराम से, और कई उनके जीवन में गिरावट आएगी, वो ऐसे गिरेंगे
कि उठ भी नहीं पाएंगे,
और कई व्यक्ति बहुत स्ट्रगल में चलते होंगे और उनके जीवन में इतनी अवेयरनेस आएगी और इतना ऊंचा चढ़ जाएगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये कर्मों का फल है। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि अभी मुझे जो करना है वो अच्छा करना है। अब तक की लाइफ मेरे पास्ट के कर्मों का फल है, लेकिन अभी की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए मैं अच्छे कर्म करूं। और दूसरी एक एडिशनल बात ये है कि मान लो मेरे पास्ट के कर्म गलत रहे हो, अभी मुझे बहुत स्ट्रगल लाइफ में आ रही है, चुनौतियां आ रही है, फिर भी मैं सही मार्ग पे चल रही हूँ, सही कर्म कर रही हूँ, तो उनसे मुझे लोगों की दुआएं मिलेगी
जी,
परमात्मा की दुआएं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है। तो उनकी दुआएं, लोगों की दुआ के पुण्य से मेरे पास्ट के खराब कर्मों की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होके उनको सहन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा।
सर, ये जो आपने इस तरह से कर्मों की फिलॉसफी को बताया कि कैसे ये काम करती है, और आपका जो मिशन है आर्ट एंड कल्चर विंग के थ्रू कैसे समाज में परिवर्तन लेकर आना है, और आपने बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयर भी कराया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज हो रहा है कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, किस तरीके से फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ लिंक करना, उन लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, एंड उसके बाद फर्दर सोचना, किस तरह से आपको लगता है कि कैसे ये जो आपका मिशन है ये इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे?
इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय के सेंटर्स हर जगह पे होते हैं, हर बड़ी सिटी में, छोटी सिटी में और छोटे गांव-गांव में हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम उनको अवेयरनेस देते हैं, जितनी भी इस विंग और कला से जुड़े हुए हमारे भाई बहने, वो अपने कला के क्षेत्र में उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं, उनसे जुड़े हुए जो भी केंद्र है, जो ट्रेनिंग स्कूल है, जैसे आज आर्टिस्ट की ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें भी हम लाइफ एम्पावरमेंट सिस्टम पे पूरे कोर्सेज कराते हैं। तो ऐसी ऐसी संस्थाओं से ये विंग के भाई बहने जाके अप्रोच करते हैं, फिर वहां उनको अवेयरनेस देते हैं, फिर उनमें से कुछ ही तो ऐसे निकलते हैं जिसको ये बातें बहुत अच्छी लगती है, तो उनको फिर हमारे जो लोकल सेंटर्स होते हैं वहां पर उनको इन्वाइट करते हैं, जहां पर हमारे इनके बेसिक कोर्स हम कराते 7 दिन के। और कई ऐसे कलाकार, जैसे आज हमारे बॉम्बे में खास करके इतने आर्टिस्ट हमारे सेंटर पर कोर्सेज करने आते हैं, और वो रेगुलर बेस पे भी आते हैं, कितना भी वो शूटिंग में व्यस्त है, वो 1 घंटा अपने जीवन का स्पेयर करते ही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 1 घंटे का एम्पावरमेंट मेरे बाकी के 23 घंटे को बेटर बनाता है। तो बड़े बड़े सिटी में तो कलाकारों के बहुत सारे केंद्र को हम अप्रोच करते हैं, इवन अभी हम गांव-गांव के अंदर भी हम अभियान लेके जाते हैं
जी।
हमारा पूरा आर्ट एंड कल्चर विंग के कई सारे अभियान अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा 10-15 भाई बहनों का ग्रुप जाता है, उसमें आर्टिस्ट भी होते हैं, और उस गांव में, उस शहर में हम उनके क्राउड को इकट्ठा करते हैं, या तो हम उस संस्था में जाते हैं और उनके अंदर ये अवेयरनेस लाते और फिर उनको लोकल सेंटर से जोड़ देते हैं। फिर जो कलाकार है उनके लिए हमारी ये विंग ऑफिस जो है हेडक्वार्टर में है, उनसे फिर ईमेल और साइंस के माध्यम से हम उनको जुड़ा देते हैं, बीच बीच में उसको कोई ना कोई नरिशमेंट देते, चाहे SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल से वो जुड़े हुए रहते हैं। फिर जो जुड़े हुए हैं उनका बीच बीच में हम रिफ्रेशमेंट कोर्स भी कराते, ان کو الگ الگ شہروں میں لے کے جاتے, ان کو آبوں میں بلاتے اور ان کو ہم ایمپاور کرتے, اور وہ انسٹرومنٹ جب ایمپاورڈ ہو جاتے تو سوسائٹی میں بہت اچھی طرح سے جاگرتی لاتے. تو اس پرکار سے ہم ہر ویکتی تک پہنچنے کا کاریہ کر رہے ہیں. یہ ونگ کا ماننا ہے کہ کلاکار ہر ویکتی کے لیے ایک مہان سندیش دے سکتا ہے, کیونکہ ہر ویکتی اپنے جیون کا کلاکار ہے.
بالکل. تو دیدی آپ نے آج اتنی ویلیوبل انفارمیشن ہمیں بتائی کہ کیسے کرموں کا سدھانت جو ہے ہمارے جیون کو پربھاوت کرتا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی کلاکار اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور وہ اپنے جیون کو ایک نئی دشا دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
اوم شانتی.
کہتے ہیں کہ کرم ایک پرچھائی ہے, کرم ایک بیج ہے, جیسا کرم میں کروں گا ویسا ہی پھل مجھے پراپت ہوگا. یدی میری کلا کے مادھیم سے لوگوں کے جیون میں ایک سکاراتمک پریورتن آتا ہے تو یہی کلا ایک پنیہ کی پونجی بن جاتی ہے, اور یدی میری کلا کے مادھیم سے لوگوں کے جیون میں نکاراتمکتا آتی ہے تو یہی کلا میرے لیے دکھ کا کارن بھی بن سکتی ہے. تو کرم کی فلسفی کو سمجھیے اور اس کو جیون میں اپنائیے. اس ایپیسوڈ کو ہم یہی سماپت کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک انیہ وشے کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. نمسکار. اوم شانتی.
We are the wings of Brahma Kumari. We are the wings.